समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी है आज पूर्णतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो करिश्मा, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट करिश्मा। Listeners, for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi addresses Ghana's parliament, says for India, democracy is not merely a system, it is a part of the country's fundamental value.
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद पर भारत के रुख का समर्थन नहीं करने पर पश्चिमी देशों के लिए सवाल उठाया, आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया।
एंड गवर्नमेंट रीइंपोज़ेस रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ सेवरल पाकिस्तानी एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स आफ्टर ब्रीफ एक्सेस। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Plastic Bag Free Day. International Plastic Bag Free Day is observed every year on July 3rd to raise awareness about the harmful effects of single-use plastic bags on the environment. International Plastic Bag Free Day was established as part of the larger Break Free from Plastic movement, which aims to reduce plastic pollution worldwide. And the day was first observed in 2009 and has since become an important event in the global environmental calendar.
इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने और कपड़े तथा कागज के बैग जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्लास्टिक बैग हालांकि सुविधाजनक है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। उन्हें विघटित होने में सैकड़ों साल लगते हैं, अक्सर लैंडफिल, जल निकायों और यहां तक कि जानवरों और समुद्री जीवों के पेट में भी ये विघटित न होने के कारण पाए जाते हैं।
Yes, and these bags contribute significantly to the global plastic waste problem, affecting ecosystems and human health. Plastic bags may seem like a grocery shopping convenience, but they are also a huge strain on the environment, and it can take up to 500 years for plastic bags to disintegrate, so they make up a large portion of what stays in our landfills and pollutes our waterways.
प्लास्टिक बायोडिग्रेड नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि अगर आप पानी की बोतल या किराने का सामान कुछ मिनटों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो वो कचरा सैकड़ों सालों तक आपके आसपास ही रहेगा। इसे इस बात से समझिए कि प्लास्टिक का आविष्कार 1907 में हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक बनाया गया सारा प्लास्टिक आज भी पर्यावरण में मौजूद है।
एंड प्लास्टिक डज इट्स जॉब टू वेल। Plastic bags might seem harmless due to the light weight and utility, but the environmental cost is staggering because they take 500 plus years to decompose.
और इसके साथ ही महासागरों को भी प्लास्टिक प्रदूषित करता है और समुद्री जीवन को भी मारता है।
Yes, and it also causes soil infertility and clogs drains.
यहाँ तक कि जलने पर हानिकारक विषाक्त पदार्थ उत्सर्जित भी करता है।
Threatens wildlife and natural habitats, and other than this, plastic pollutes our mother earth and the environment as a whole in many other ways.
और इसके साथ ही जब प्लास्टिक की कलाकृतियां जल निकासी और सीवरेज प्रणाली में प्रवेश करती हैं, तो वे पाइपों और नालियों को अवरुद्ध कर देती हैं, जिससे जल भराव भी होता है।
The improperly disposed of food bags when eaten by animals cause stomach and intestine related diseases, which even lead to suffocation and death.
इसके साथ ही प्लास्टिक की वस्तुएं नदी और अन्य जल निकायों में भी पहुंच जाती हैं, जिन्हें मछलियां और अन्य समुद्री प्रजाति निगल लेते हैं, जिससे दम घुटने से भी उनकी मौत हो जाती है।
The waste from the plastic manufacturing industry is thrown directly into the water bodies, thus affecting the chemical property of water, causing hazards on a very large scale. And theme for this year is Unbag the Future, Choose Reusable, Choose Sustainable. The 2025 theme emphasizes the shift from harmful plastic bags to sustainable, reusable alternatives. It calls on communities and individuals to break the dependency on plastic and protect our ecosystems.
तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस सुरक्षित विकल्पों की तलाश करता है, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि इतने अधिक प्लास्टिक के उपयोग के बिना भी दुनिया संभव है। यह आंदोलन प्लास्टिक प्रदूषण संकट के समाधान की तलाश कर रहा है, ताकि ग्रहों को, मनुष्यों को, पर्यावरण को और वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया जा सके।
And it looks for safer alternatives to demonstrate that a world without the use of so much plastic is possible. And listeners, as the theme says, choose reusable, choose sustainable. What steps are we as an individual can take to reduce single-use plastic? Well, for one, replace plastic shopping bags with reusable cloth, cotton or jute bags.
तो छोटी छोटी कोशिशें ही हम कर सकते हैं, जिसमें भोजन के भंडारण के लिए स्टेनलेस स्टील के कंटेनर, कांच के जार, मोम के आवरण या पुनः प्रयोज्य सिलिकॉन कंटेनर का उपयोग किया जा सकता है।
Yes, and you can also choose reusable water bottles, coffee cups and tumblers made of stainless steel, glass or bamboo. And nowadays we can see even bottles made of copper and handmade clay water pot.
इसके साथ ही पुनः उपयोग योग्य जो बांस या स्टेनलेस स्टील के कटलरी और स्ट्रॉ का भी चयन कर सकते हैं।
Consider using bees wax wraps, reusable silicone containers or glass jars for packaging food.
इसके साथ ही प्लास्टिक के टूथब्रशों की जगह बांस के टूथब्रशों का उपयोग करें, तथा मेकअप हटाने के लिए पुनः प्रयोज्य कॉटन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
And here, Karishma, I'd like to talk about one principle that everyone should follow is the 3 R's, reduce, reuse and recycle. Reduce, minimize the amount of waste generated in the first place. This can involve mindful consumption, choosing products with less packaging and using resources efficiently.
और इसके साथ ही पुनः उपयोग वस्तुओं को कई बार उपयोग करने के तरीके खोजना, या तो उनके मूल उद्देश्य के लिए या किसी नए उद्देश्य के लिए। इसमें कंटेनरों को फिर से भरना, पुनः उपयोग योग्य शॉपिंग बैग का उपयोग करना या वस्तुओं का पुनः उपयोग करना शामिल हो सकता है।
Yes, and some eco-friendly ways to mark the day are refuse plastic bags.
इसके साथ ही सफाई अभियान आयोजित करें और स्थानीय पर्यावरण अभियानों में शामिल हों।
Conduct workshops to educate others about plastic alternatives.
इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर मेकर ऐप का इस्तेमाल करें। इस पर अधिक ध्यान देने के लिए सोशल मीडिया के विशाल नेटवर्क और संचार चैनलों के रणनीतिक उपयोग के माध्यम से हम प्लास्टिक बैग के उपयोग से होने वाले खतरे के खिलाफ जागरूकता और कार्रवाई की दिशा में गति पैदा कर सकते हैं।
The Plastic Waste Management Rules 2016 bans earbuds with plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice cream sticks, polystyrene, thermocol for decoration, plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straws, trays, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards and cigarette packets, plastic or PVC banners less than 100 micron stirrers. And the notification also prohibits manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of plastic carry bags having thickness less than 75 microns and having thickness less than 120 microns.
और इसके साथ ही कुछ स्थानों पर किसी भी तरह के प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है या नियम लागू किए गए हैं। ये उपाय करने वाले स्थानों में हवाई, उत्तरी कैरोलिनिया, इटली, चीन, अफ्रीका के कई देश और ऑस्ट्रेलिया और भारत के कुछ राज्य भी शामिल हैं। कुल मिलाकर लगभग 127 देश किसी न किसी तरह से प्लास्टिक बैग को नियंत्रित करते हैं। इन नियमों में प्लास्टिक बैग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना और दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले बैग के लिए प्रोत्साहन देना शामिल है।
So to conclude our discussion today, Karishma, International Plastic Bag Free Day reminds us of the urgent need to address the environmental and health hazards associated with single-use plastic bags. By embracing reusable alternatives and advocating for policy changes, we can make a tangible impact on reducing plastic waste. Incorporating sustainable practices into a daily routine is an excellent step in protecting the environment.
और हमारे व्यक्तिगत कार्य समाज में व्यापक मानसिकता परिवर्तन में योगदान करते हैं. जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग पुनः प्रयोज्य बैग अपनाते हैं और प्लास्टिक मुक्त विकल्प तलाशते हैं, मानदंड बदलते हैं, मानसिकता में ये बदलाव न केवल प्लास्टिक बैग के संबंध में बल्कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी बदलाव दिखाएंगे.
So let us take the responsibility today and make changes that ensure that future generations get to enjoy clean surroundings free from unnecessary waste like plastic bags. Join the movement and be the solution. There's no such thing as away. When we throw anything away, it must go somewhere.
तो इसी के साथ श्रोताओं, प्लास्टिक को ना कहें और स्वस्थ भविष्य के लिए हाँ कहें.
Union Minister for Communications Jyotiraditya Scindia has said that India Post is undergoing a major technological transformation. In an exclusive interview with Akashvani News, the minister said that for the first time, a Chief Technology Officer, CTO, has been appointed in the organization, and he added that the CTO will work on innovation and drive technological advancements within India Post.
आज सूचना प्रौद्योगिकी में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है, तो ये डाक विभाग का एक अंग बने, ये तो मैं मानता हूं कि हमारे लिए एक जरूरत है, अनिवार्य है. और इसलिए पहली बार डाक विभाग में एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को हमने रखा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आधार पे ही, वो सॉफ्टवेयर के आधार पर, हर डाकिये के हाथ में जो पहले चिट्ठियों का बंडल होता था, अब उसे एक हैंडहेल्ड पोर्टेबल मोबाइल के आधार पर हम लोग ने दिया. तो एक CTO हमने पोजीशन की है और एक वर्टिकल के साथ एक वाइस CTO, क्योंकि उस IT 2.0 सॉफ्टवेयर के आधार पे ही इसे एक लॉजिस्टिकल पावर हाउस हम लोग बनाना चाहते हैं. पूरा रीऑर्गेनाइजेशन और एक बिजनेस प्रोसेस रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग. उदाहरण के तौर पर अगर आप पार्सल का क्षेत्र रहो, तो कौन सा पार्सल का हब मैकेनाइज्ड होना चाहिए.
And this exclusive interview will be broadcast on 100.1 Akashvani FM Gold Channel and additional frequencies on Akashvani at 9:30 PM today. And the interview will simultaneously stream on our YouTube channel, News on AIR Official. And as Prime Minister Narendra Modi prepares for his upcoming visit to Trinidad and Tobago, the cultural heartbeat of India already echoes in Port of Spain. Local Indian radio stations like Jagriti and Akashvani continue to preserve heritage through Hindi songs, bhajans and traditional programming, bridging generations and keeping India's spirit alive in the Caribbean nation. We have a report.
The soulful echoes of Indian radio, much like Akashvani in India, are alive and well in Trinidad and Tobago. On any given morning in Port of Spain, the air carries the chants of aarti and the melody of old Indian Hindi songs. Stations like Radio Jagriti, Sangeet and Akashvani are more than just music, they are cultural sanctuaries. The common culture and love for Hindi music beyond the borders is remarkable. People love Bollywood songs, movies. They may not understand the lyrics, but they love singing them. For the Indo-Trinidadian community, the radio stations like Jagriti Akashvani are lifelines to heritage, offering bhajans, Ramayan readings and classic Hindi film songs that evoke memories of another homeland. Whether it's a teen learning Hindi film songs or an elder reconnecting with verses from the Gita, these broadcasts are the bridge across time and place. For Parikrama, Sakshi Singh, Port of Spain.
The annual 38-day Sri Amarnath Ji Yatra that formally commenced today is going on smoothly from twin routes of Pahalgam in South Kashmir's Anandnag district and Baltal in Central Kashmir's Ganderbal district. The Yatri movement started early morning from both routes under strict security cover. The holy cave is known for the eye's stalagmite that forms within, resembling a Shivlinga, and the cave is situated at an altitude of 12,756 feet in the Himalayas in the Kashmir region.
Over 3,000 devotees were allowed towards Chandanwari on Pahalgam route early today morning. More than 9,000 pilgrims were allowed from Baltal Ganderbal base camp towards sacred cave shrine. Yatris were seen very happy, delightful and content over all kinds of arrangements, facilities and secure environment all along the twin routes. Lakhs of devotees from across the country are expected to pay obeisance this year at 12,756 feet high holy cave in the Himalayas in Kashmir. Kashmir region. Elaborate foolproof security arrangements have been put in place for the safe, seamless and secure pilgrimage. Meanwhile, a fresh batch of over 5,000 pilgrims, including men, women, children, sadhus, in 238 vehicles were flagged off from Bhagwati Nagar base camp in Jammu today morning. These yatris will reach their respective base camps by this evening. Tariq Rauter, Akashwani News, Srinagar.
दुनिया भर में जल परिवर्तन की पृष्ठभूमि पर कृषि आपदा प्रबंधन और नीति निर्माण के लिए सटीक मौसम की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम यानी कि विंड्स नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसी की जानकारी दे रहे हैं हमारे पुणे संवाददाता।
राजस्व मंडल स्तर पर स्थापित मौसम केंद्रों से प्राप्त जानकारी पूरे क्षेत्र के लिए सटीक नहीं होती है। हकीकत में हर गांव में मौसम की स्थिति अलग अलग होती है, जैसे बारिश के मौसम में खेत में काम करते समय बिजली गिरकर होने वाली मृत्यु। वर्तमान में दामिनी और सचेत ऐप 40 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने की पूर्व चेतावनी देते हैं, लेकिन इससे भी कम दायरे में बिजली गिरने की पूर्व चेतावनी मिलना अति आवश्यक है। बारिश, ओलावृष्टि और हवा की मात्रा हर गांव के लिए अलग अलग होती है, इसलिए अगर ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम केंद्र स्थापित किए जाए तो वर्तमान के साथ साथ न्यूनतम अधिकतम तापमान, वर्षा, सापेक्षिक आर्द्रता, हवा की गति और दिशा तथा वायु दाब की जानकारी समय समय पर एकत्रित की जा सकेगी। इन अभिलेखों को संधारित करने के लिए प्रत्येक केंद्र पर एक ग्राम सेवक या स्थानीय अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सिस्टम को चालू और कार्यशील रखना, नियमित रखरखाव और निरीक्षण, किसी भी दोष की सूचना संबंधित भागीदार को देना, निरीक्षण का नियमित रिकॉर्ड रखना, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। ये जानकारी केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और इसका उपयोग किसानों को सटीक कृषि सलाह, बीमा दावों का आधार निर्धारण, आपदा पूर्व चेतावनी और मौसम अनुसंधान के लिए किया जा सकेगा। इस निर्णय से मौसम केंद्रों की सटीकता और उपयोगिता बढ़ेगी, किसानों के लिए फसल नियोजन में सुधार होगा, कृषि बीमा दावों का अधिक वास्तविक रूप से निपटारा होगा, सरकारी नीतियों को और अधिक ठोस बनाया जा सकेगा और मौसम विज्ञान को नए पंख लगेंगे। परिक्रमा के लिए पुणे से मनोज क्षीरसागर।
Andhra Pradesh takes a bold step in the global fight against climate change, with Visakhapatnam emerging as the leader in urban climate resilience. The city's innovative approach has earned it a spot among the top 50 global finalists in the Bloomberg Mayor's Challenge 2025. More on this from a correspondent.
In a major recognition of local innovation, Visakhapatnam in Andhra Pradesh has been selected as one of the 50 global finalists in the prestigious Bloomberg Philanthropies Mayor's Challenge 2025. The international competition aims to support transformative community-driven ideas that solve urban challenges, and Visakhapatnam now stands among the top cities from 33 countries chosen out of more than 630 global applications. The Greater Visakhapatnam Municipal Corporation, GVMC, has earned this honor for its forward-thinking proposal, Prajamukhi Urban Living Lab or VPUL. The idea focuses on co-creation and citizen participation to combat climate-induced risks such as floods, cyclones and extreme heat. As part of the selection, Visakhapatnam will receive $50,000, that is nearly 42 lakh rupees, in seed funding and export guidance to prototype its idea. Sai Sishla for Parikrama, Akashwani, Visakhapatnam.
झारखंड में नीली क्रांति का असर अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसमें कारगर साबित हो रही है। नीली क्रांति से जुड़कर राज्य के युवाओं को जहां रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं, वहीं उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है।
केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहारे झारखंड मछली उत्पादन के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। कुछ साल पहले तक यह राज्य मछली के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर था, अब यह दूसरे राज्यों को मछली के साथ साथ उसका बीज भी निर्यात कर रहा है। राज्य के किसान मछली पालन के जरिए आर्थिक उन्नति की नई कहानी लिख रहे हैं। ऐसे ही एक लाभुक निशांत कुमार ने हमसे इस बारे में जानकारी साझा की।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, ये हमारे जैसे बहुत सारे मत्स्य किसानों को आगे कर रही है, उनको सशक्त करने में मदद कर रही है।
झारखंड के गुमला जिले का बसिया प्रखंड तो मछली पालन में नजीर पेश कर रहा है। यहाँ कुछ समय पहले तक नक्सली गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले पप्पू सोनी मत्स्य पालन के जरिए मुख्य धारा में लौट आए हैं। वहीं गांव के ज्योति लकड़ा भी किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। वे बताते हैं कि मछली पकड़ने का शौक कब व्यवसाय बन गया पता ही नहीं चला। मछली पालन के व्यवसाय को गति देने के लिए उन्होंने अच्छी खासी नौकरी भी छोड़ डाली है। आकाशवाणी से इन दोनों ने अपने अनुभव साझा किए।
2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद से रोजगार की व्यवस्था है, विकास का भी काम हो रही है। यहाँ ना सड़क था ना सुविधा था, सड़क भी बन गई है, आदमी का रोजगार भी बढ़ गया,
जिससे हमारी आमदनी लगभग लगभग सालाना का 5 लाख रुपया हो जाती है। और आज तालाब से प्रोडक्शन के रूप में हम जब मछली बेचते हैं तो सालाना कम से कम 40 लाख आसपास आती है।
झारखंड में पिछले कुछ सालों में किए गए नवाचारों से आ रही नीली क्रांति को इंदौर में अंतरदेशीय मत्स्यिकी एवं जल कृषि सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री के अलावा देश भर से जुटे प्रगतिशील पशुपालकों की सराहना मिल चुकी है। परिक्रमा के लिए करमवीर के साथ रांची से शिल्पी की एक रिपोर्ट।
In business news, the benchmark domestic equity indices today failed to hold gains and ended with modest losses. Both indices gave up the initial positive momentum and slipped into negative territory in the last hour of the trade. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, dropped 170 points to close at 83,239. The National Stock Exchange Nifty 50 declined 48 points to settle at 25,405 amid volatile weekly expiry session. And on to some sports news. In cricket, India have strengthened their position against hosts England in the second test of the Anderson Tendulkar Trophy with a commanding batting display on day two. The visitors were 377 for 5 a short while ago. Captain Shubman Gill's unbeaten century and a gritty half century from Ravindra Jadeja has reinforced India's strong position.
और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिन। इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे।
वी रिमेम्बर नेशनलिस्ट हंसा जीवराज मेहता, हु वाज बोर्न ऑन द 3rd of July 1897 इन सूरत, गुजरात। शी पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन एंड स्वदेशी मूवमेंट्स एंड वाज अरेस्टेड इन 1932।
हंसा जीवराज मेहता स्टडीड फिलोसफी एट बरोडा कॉलेज एंड देन जर्नलिज्म एंड सोशियोलॉजी इन इंग्लैंड। इन 1920 व्हाइल इन लंदन मेहता मेट सरोजिनी नायडू, हु वुड लेटर इंट्रोड्यूस हर टू महात्मा गांधी एंड द इंडियन वुमेन्स फ्रीडम मूवमेंट। मेहता'स पॉलिटिकल करियर वाज मार्क्ड बाय हर 1937 बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन विन।
Mehta remained on the council until 1949. During this time, Mehta became closely involved with the All India Women's Conference and became its president in 1946. During her presidency, she drafted the Indian Women's Charter of Rights and Duties, which demanded gender equality and civil rights for women.
Mehta also served as a member of the United Nations Subcommittee on the Status of Women in 1946. She was the vice chair with Eleanor Roosevelt of the United Nations Universal Declaration of Human Rights Committee. Mehta became the first female vice chancellor in India with her appointment at Srimati Nathibai Damodar Thakrasi University in Mumbai.
Mehta was elected to the Constituent Assembly from Bombay, where she strongly argued in favor of women's rights and intervened in debates on uniform civil code and reservation. Mehta was the Indian delegate to the United Nations Human Rights Commission.
She played a significant role in ensuring that Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights was made inclusive and is credited with changing the phrase, all men are born free and equal, to all human beings are born free and equal.
The Government of India awarded Hansa Jeevraj Mehta with the Padma Bhushan in 1959. She passed away on the 4th of April 1995. This great daughter of India.
We also remember nationalist Maulana Habibur Rahman Ludhianvi, who was born on the 3rd of July 1892 in Ludhiana, Punjab. He participated in the Khilafat and non-cooperation movements and was arrested for his inspiring speech appealing to the people to rise up against the British.
Yes, and we also remember James Douglas Morrison, or Jim Morrison, who passed away on this day in 1971. He was an American singer, songwriter and poet who was the lead vocalist and primary lyricist of the rock band The Doors. And due to his charismatic persona, poetic lyrics, distinctive voice, and unpredictable performances, along with dramatic circumstances surrounding his life and early death, Morrison is regarded by music critics and fans as one of the most influential front men in rock history. And since his death, his fame has endured as one of the popular culture's top rebellious and oft-displayed icons, representing the generation gap and youth counterculture. Let's listen into his hit track, Riders on the Storm.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm.
और कहते हैं कि कुछ लोग जिंदगी जीने नहीं देश के लिए मिटने आते हैं. ऐसे ही थे कारगिल युद्ध के वीर कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं. बचपन से ही कैप्टन मनोज का सेना में जाने का सपना था. 1997 में वो गोरखा रेजिमेंट में शामिल हुए, लेकिन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान बंकर पर कब्जा करते हुए उन्होंने बहादुरी से आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और देश के लिए महज 21 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए. कैप्टन मनोज की वीरता, साहस और देशभक्ति के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. कैप्टन मनोज पांडे आज भी हर भारतीय युवा के लिए प्रेरणा हैं.
Yes, and we remember Tom Cruise, who was born on this day 1962. He is an American actor and film producer regarded as a Hollywood icon. He has received various accolades, including an honorary Palme d'Or and 3 Golden Globe Awards, in addition to nominations for 4 Academy Awards. As of 2025, his films have grossed over $13.3 billion worldwide, placing him among the highest-grossing actors of all time. He is one of Hollywood's most bankable stars, and Cruise began acting in the early 1980s and made his breakthrough with leading roles in Risky Business and Top Gun, the latter earning him a reputation. Cruise subsequently established himself as a star of science fiction and action films, often performing his own risky stunts. He played fictional agent Ethan Hunt in 8 Mission Impossible films, beginning with Mission Impossible 1996 and ending with Mission Impossible The Final Reckoning 2025. His other films in the genre include Vanilla Sky, Minority Report, The Last Samurai, Collateral, War of the Worlds, Night and Day, Jack Reacher, Oblivion, Edge of Tomorrow, and Top Gun Maverick. And let's listen to the haunting tune of the Mission Impossible. Also remembering Raj Kumar, born Kulbushan Pandit, who passed away on this day in 1996. He was an Indian actor who worked in Hindi films. In a career that spanned over 4 decades, he went on to star in 70 films and is regarded as one of the most successful actors of Indian cinema.
तो जिनकी आवाज, अंदाज और संवाद, बोलने का तरीका बिल्कुल अलग था, वो थे जाने माने अभिनेता राजकुमार. कहते हैं कि पेशे से वो पुलिस अफसर थे, लेकिन उनका मन फिल्मों में ही लगता था. 1952 में फिल्म रंगीले से करियर की शुरुआत की और फिर मदर इंडिया, वक्त, पाकीजा, लाल पत्थर, सौदागर, तिरंगा जैसी फिल्मों से लोगों के दिलों पर छा गए. राजकुमार की सबसे बड़ी ताकत थी कम शब्दों में गहरी बात कह जाना. हर किरदार में उनका अलग ही रुतबा होता था, चाहे वो ठेठ देसी हो या शाही राजसी. फिल्म सौदागर में बोले गए ये डायलॉग आज भी लोगों को काफी पसंद आते हैं.
हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा.
Yes, and friends, Kafka was born on this day in 1883. He was a novelist and writer from Prague who was Jewish, Austrian and Czech, and wrote in German. He is widely regarded as a major figure of 20th century literature. His work fuses elements of realism and fantastic, and typically features isolated protagonists facing bizarre and surreal predicaments and incomprehensible socio-bureaucratic powers. And the term Kafkaesque has entered the lexicon to describe bizarre situations like those depicted in his writing, and the domain of mystical parables overlaps with the alienating experience of urban life's complexities in these stories. His best-known works include the novella The Metamorphosis in 1915 and the novels The Trial and The Castle.
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इसी के साथ परिक्रमा का ये अंक यहीं समाप्त हुआ।
नमस्कार।